इस प्रकार युग बीतते चले गए। देवी ने मानवीय कानूनों से अपने अनुयायियों की सदैव रक्षा की है और वे भी हर जगह ईमानदार पाए गए, परंतु उनमें भी संसार में बढ़ती हुई दुष्चरित्रता के कारण भ्रष्टाचार पनप गया है। अंततः जो गिरोह अन्य की अपेक्षा अधिक साहसी और विलक्षण होता है, वो किसी यात्री का विनाश करने के बाद पुरानी प्रथा के अनुसार शव को वैसे ही छोड़ देने की अपेक्षा ये विचार करने लगा है कि उसका कैसे निस्तारण किया जाए। किसी की दृष्टि उन पर ना पड़े, इसलिए वे मार्ग के निकट किसी झाड़ी में छिप जाते थे और देवी के आगमन की प्रतीक्षा करते रहते थे। लेकिन देवी की दृष्टि से कोई मनुष्य कैसे बच सकता है? वो उन्हें तुरंत देख लेती थी और अपने सामने बुला लेती थी। उसके अलौकिक तथा भयंकर रूप को देख और उसके क्रोध से भयभीत होकर वे भागने की चेष्टा करते थे, परंतु वो उनके कदमों को आगे बढ़ने से रोक देती तथा उनके अविश्वासी होने के कारण उन्हें दंडित करती। देवी ने उनसे कहा, तुमने मुझे देखा और मेरी शक्ति को भी, जिसे कोई नश्वर जीव बिना विनष्ट हुए नहीं समझ सका, परंतु इस बार मैं तुम्हें मुक्त करती हूं। भविष्य में मैं इस प्रकार तुम्हारी अभिरक्षा न कर सकूंगी। आगे से तुम लोग जिनकी हत्या करोगे, उनके शवों को मैं न हटाऊंगी। उन्हें छिपाने के उपाय तुम्ही को करने होंगे। वे भी सदैव प्रभावी नहीं होंगे और धरती की शक्तियां प्रायः तुम्हें खोज लेंगी और तुम्हें दंडित करेंगी। तुम्हारी बुद्धिमता और चतुराई तुम में बनी रहेगी। भविष्य में मार्गदर्शन के लिए शकुन विचार द्वारा मैं तुम्हारी सहायता करती रहूंगी। मेरा यह निर्णय संसार के नवीनतम समय तक बना रहेगा। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और उन्हें स्वयं अपनी मूर्खता तथा दुस्साहस का परिणाम भुगतने के लिए छोड़ दिया, किंतु उसने अपना रक्षक हाथ कभी नहीं हटाया। यह सत्य है कि उन लोगों के शवों के अवशेष जो हमारे हाथों द्वारा मारे जाते हैं, कभी कभी खोज लिए जाते हैं, और जैसा सुनने में आया है कि ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि उस खोज के आधार पर ठग पकड़े गए हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में किसी को भी पकड़े जाते नहीं देखा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिन लोगों ने देवी को रुष्ट किया होगा, उन्हें दंडित करने के अभिप्राय से ऐसी घटनाएं अवश्य हुई होंगी। इस प्रकार तुम समझ गए होगे कि युगों से हमारे बाप दादों द्वारा